दिन भर तारीख 7 सितंबर दिन गुरुवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। 1993 मुंबई बम धमाके मामले में टाडा कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, अबू सलेम और करीमुल्लाह को उम्र कैद।
पांच में से दो को डेथ, दो को लाइफ और एक को 10 इयर्स दिए।
24 साल पहले पुलिस के लिए कितना मुश्किल था मुंबई धमाकों की गुत्थी सुलझाना।
सबसे दिक्कत ये था हमारा कि एक तो कॉन्स्पिरेसी दुबई में हुआ था, इंडिया में कुछ उसका पता आता पता कुछ नहीं था।
और पत्रकार गौरी लंकेश के परिजन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार से की हत्या के हर एंगल से जांच की मांग।
No, I've never changed my stand. I said the Nexus also might be involved.
होंगे आपके पत्र भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले की सुनवाई कर रही टाडा अदालत ने अबू सलेम और करीमुल्लाह शेख को उम्र कैद और ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल्ला शिद खान को मौत की सजा सुनाई है, जबकि रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तूफान इरमा से कैरेबियाई क्षेत्र के द्वीपों पर भारी तबाही हुई है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। तूफान इरमा अपने उच्चतम संभव स्तर यानी श्रेणी 5 का है, जो अब उत्तरी वर्जिन आइलैंड समूह से गुजर रहा है। सेंट मार्टिन द्वीप सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तूफान के बाद वहां बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है और गाड़ियां सड़कों पर पानी में बह रही हैं। डच प्रधानमंत्री ने कहा कि 40,000 लोगों को खाने और पीने लायक पानी की ज़रूरत है। बारबूडा और एंग्विला के द्वीपों पर भी तबाही का मंजर है। यह तूफान शनिवार को अमरीका के फ्लोरिडा प्रांत तक पहुँच सकता है। एंटीगुआ और बारबूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा,
The Barbuda landscape has been totally decimated by Hurricane Irma.
तूफान इरमा ने बारबूडा को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है और अप्रत्याशित स्तर पर इसका नुकसान हुआ है। प्रभावित लोगों की संख्या के लिहाज से ये हाल के दिनों की सबसे बुरी मानव त्रासदियों में से है। 90% मकान और बाकी संपत्तियां नष्ट हो गई हैं, घरों की छतें उड़ गई हैं और बहुत सारे मकान ढह गए हैं। संचार व्यवस्था भी पूरी तरह ठप हो गई है और अस्पताल और इमारतें भी तबाह हो गए हैं। ये थे एंटीगुआ बारबूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के शब्द। एक बीबीसी संवाददाता ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में 2 हफ्तों से जारी हिंसा और तबाही का करीब से जायजा लिया है। उन्हें प्रशासन की मदद से हिंसा प्रभावित जगहों पर ले जाया गया। उन्होंने देखा कि पेट्रोल के जग हाथ में लिए हुए रखाइन मूल के नौजवान मुस्लिम गांवों को आग के हवाले कर रहे थे। वहाँ एक बड़ा इलाका लोगों से खाली हो गया है और फसलें जल गई हैं। रखाइन प्रांत में हिंसा की शुरुआत तब हुई थी जब मुस्लिम रोहिंग्या चरमपंथियों ने 30 पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया था, जिसके जवाब में सेना उतारी गई थी। तब से सवा लाख से ज्यादा रोहिंग्या वहां से भागकर बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। सीरियाई सेना ने कहा है कि इजरायली लड़ाकू हवाई जहाजों ने मसायफ शहर के पास सीरियाई सेना पर हमला कर दिया, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई है। इसराइली मीडिया की खबरों से संकेत मिले हैं कि इसराइली सेना का निशाना एक रासायनिक संयंत्र था। इसी इलाके में सीरिया की उस सरकारी एजेंसी की शाखा भी है जिस पर अमेरिका रासायनिक हथियार विकसित करने के आरोप लगा चुका है। ऐसे संकेत भी हैं कि इस इलाके का इस्तेमाल भविष्य में लेबनानी चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लिए रॉकेट बनाने के लिए किया जा सकता था। इसराइल हाल के वर्षों में लगातार हिजबुल्लाह की हथियार आपूर्ति वाली जगहों को निशाने पर लेता रहा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटार्टे के बेटों में से एक ने लाखों के नशा तस्करी के काम से जुड़े होने से इनकार किया है। पाओलो डुटार्टे ने एक बयान में सीनेट की सुनवाई में कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोप निराधार हैं, हालांकि उन्होंने सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति के दामाद भी इस मामले में सीनेट के सामने पेश हुए। राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटार्टे ने पिछले साल नशा तस्करी के खिलाफ एक हिंसक अभियान शुरू किया था और यह भी कहा था कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य इसमें शामिल पाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। सीनेट के सामने सफाई पेश करते हुए पाओलो डुटार्टे ने कहा, मैं यहाँ मौजूद हूँ अपने फिलिपिनो और दवाइने लोगों के लिए जिनकी मैं सेवा करता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं ऐसी अफवाह वाले आरोपों का जवाब नहीं दे सकता। ये थे फिलीपींस के राष्ट्रपति के बेटे ओलो डुटार्टे के शब्द। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। आज से ठीक 24 साल 5 महीने और 25 दिन पहले मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठी थी। तारीख थी 12 मार्च 1993 और दिन था शुक्रवार। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। आज इसी मामले में मुंबई की एक टाडा अदालत ने 5 दोषियों को सजा सुनाई। ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान को मौत की सजा सुनाई गई, वहीं अबू सलेम और करीमुल्ला शेख को उम्र कैद और रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई। पूरे मामले पर एक रिपोर्ट के साथ मुंबई से हमारे सहयोगी मयूरेश।
मुंबई की विशेष टाडा अदालत में माहौल आज बहुत गंभीर था। अदालत के बाहर पुलिस भारी संख्या में खड़ी थी और सेशंस कोर्ट की बिल्डिंग की चौथी मंजिल की कोर्टरूम नंबर 54 वकील, पत्रकारों और पुलिस से खचाखच भरी थी, क्योंकि 24 साल बाद 12 मार्च 1993 के धमाकों के बाद मुंबई को इंसाफ दिलाने वाला फैसला आज आने वाला था। 11 बजे मुंबई धमाके के आरोपी अबू सलेम, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट उर्फ ताहिर टकलिया, फिरोज खान और रियाज सिद्दीकी, इनको एक एक कर पुलिस कोर्टरूम में ले आई। इसी साल 16 जून को 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और एक को निर्दोष बरी किया गया। फैसले के कुछ दिन बाद ही मुस्तफा डोसा की मौत हो गई और अब आज गैंगस्टर अबू सलेम समेत 5 दोषियों को सजा सुनाई जानी थी। जज गोविंद सानप 11 बजे सजा का ऐलान करने वाले थे, मगर सुनवाई करीब 1.5 घंटे बाद 12:30 बजे शुरू हुई। जज सानप ने बिना बाकी कुछ कहे सीधे सजा सुनाना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत करीमुल्ला शेख से की, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जज सानप ने अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई, उनके बाद ताहिर मर्चेंट और फिरोज शेख की बारी आई तो पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा हो गया। इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर रियाज सिद्दीकी को भी 10 साल के कैद की सजा सुनाई गई। सीबीआई की तरफ से एडवोकेट दीपक सालवी ने यह मुकदमा लड़ा था।
दो आरोपियों को डेथ पनिशमेंट दी है और बाकी के दो आरोपियों को लाइफ पनिशमेंट दी है, एक को 10 साल की पनिशमेंट दी है। 5 में से 2 को डेथ, 2 को लाइफ और एक को 10 इयर्स दिए। अभी ताहिर मर्चेंट जो है उसको डेथ पनिशमेंट दी है 302 रेड विथ 120B में और 33 में भी, 321 में। और फिरोज अब्दुल रशीद खान को भी वैसे ही सेम डेथ पनिशमेंट, दोनों को सेम दी हुई है।
1993 के मुंबई धमाकों में कुल 257 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस केस के पहले ट्रायल में 100 दोषियों को सजा सुनाई गई और अब इस दूसरे ट्रायल में 5 दोषियों को सजा मिली। अबू सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था। उन धमाकों में जिन्होंने अपनों को खोया वो आज के फैसले से संतुष्ट हैं, लेकिन अभी पूरे न्याय की प्रतीक्षा में है। तुषार देशमुख ने अपनी माँ को सेंचुरी बाजार में हुए धमाके में खो दिया था।
ये सब 24 साल हमने मन में रखा था कि जिन्होंने ये किया है हर एक आतंकवादी को फांसी ही मिलनी चाहिए, ये हमारे कहने का मतलब था। मगर बहुत ही समय गया, हमारा फाइट है ये यही नहीं रुकता है। मेन जो क्रिमिनल है वो दाऊद इब्राहिम है और दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान आज भी सपोर्ट कर रही है, तो अभी हम राह देख रहे हैं कि दाऊद कभी यहाँ लाया जाएगा और जब भी उसको फांसी होगी तभी हमको थोड़ी सी ना थोड़ी राहत मिलेगी।
मुंबई धमाकों के इस मामले में आज भी 33 आरोपी फरार हैं, इनमें से कुछ देश छोड़कर भाग गए हैं। उन्हीं में दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम और टाइगर मेमन, इनके भी नाम शामिल हैं। मयूरेश कोन्नूर, बीबीसी मुंबई।
मुंबई धमाके के बाद पुलिस के सामने अभियुक्तों का पता लगाने और सबूत जुटाने की चुनौती थी। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं था। ऐसे में पुलिस उस वक्त कैसे आगे बढ़ी, ये जानने के लिए मैंने उस वक्त सेंट्रल मुंबई में एडिशनल कमिश्नर रहे YC पवार से बात की और सबसे पहले पुलिस की दिक्कतों को लेकर ही सवाल पूछा।
सबसे दिक्कत ये था हमारा कि एक तो कॉन्स्पिरेसी दुबई में हुआ था, इंडिया में कुछ उसका पता आता पता कुछ नहीं था, तो स्टार्ट करे तो कहाँ से स्टार्ट करे। एक सुराग जो मिला था कि जो ओमनी गाड़ी मिली थी उसमें एक गाड़ी के आरसी बुक की जेरोक्स कॉपी थी, लेकिन वो गाड़ी का और इसका कनेक्शन है क्या नहीं वो भी नहीं मालूम था क्राइम का, लेकिन उसमें जो AK-47 और जो हथियार मिले थे उसके बेसिस के ऊपर इसका लिंक उसके साथ भी जुड़ता था। वही धागा पकड़ के हम पहले टाइगर मेमन के घर पे सर्च किए तो वहां पर छठे माले पर RDX का सूखा हुआ थोड़ा सा पाउडर मिला, पांव के निशान पे एक चाबी मिला, वो जो स्कूटर का चाबी था ब्रांड न्यू, वो स्कूटर जो बाहर दादर थाने के बाहर थी उसके ऊपर से वो निकला। बिल्डिंग से नीचे आने के बाद में कंपाउंड वॉल के बाहर जाके देखा तो वहां पर लाहौर का ठप्पा लगा हुआ, बॉक्सेस पड़े थे कार्डबोर्ड के, उसमें से एक बॉक्स उठाया, लाहौर पड़ने के बाद में कंफर्म हुआ कि इसमें टाइगर मेमन ही होगा, लेकिन टाइगर मेमन कहां मिलेगा, भाग गया हो। हमारे पास में एक इन्फॉर्मेंट मिली थी हमको, उन्होंने हम आपको बताया रास्ता, बातचीत उसने दाऊद के साथ में किया, वो मैंने खुद सुना था, और इस वजह से ये सारा फिर आगे थोड़ा थोड़ा मामला आसान होते गया। तो थैंक्स टू दैट वुमन जिन्होंने हमको मदद किया। दूसरा ऐसा है कि ये सारा जो लिंक जमे, लक अच्छा था मुंबई पुलिस का, इसलिए हमको और बहुत बिफोर उनका कुछ आगे पाव गिरने के पहले फटाफट जो मिल गए उनको पकड़ के रख लिया, इसकी वजह से हो गया।
पहले तो आपको सिरे जोड़ने थे, उसके बाद आपको सबूत जुटाने थे, किस तरह से ये पूरा केस आगे चला, क्योंकि आपने जैसे बताया शुरुआत में आपके पास कुछ जानकारी नहीं थी।
नहीं, मेरा तो पार्ट जितना था वो सिर्फ डिटेक्शन पूरा था, बाद में जो आगे का इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा क्राइम ब्रांच ने किया। मैं 40 दिन जुड़ा था केस के साथ में, उस 40 दिन में कोई 47-48 लोग पकड़े थे हमने, और फिर वो क्राइम ब्रांच ने आगे का तपास किया।
इस मामले में आज 5 लोगों को सजा सुनाई गई है, आप इस केस से शुरुआत में जुड़े रहे थे, क्या कहेंगे?
नहीं, खुशी है कि जो कष्ट किए थे पुलिस वालों ने, जो मेहनत किया था, एक्चुअली शुरू में तो ये भी कहा जा रहा था कि झूठा डिटेक्शन है, बकवास है, ऐसे ही लोगों के आंख में धूल झांकने के लिए और क्रेडिट लेने के लिए मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन ये सजा मिलने के बाद में उसके ऊपर मोहर लग गया कि भाई जो किया था हम लोगों ने वो सही था और किसी को गलत फंसाया नहीं गया था, ये उसके ऊपर मोहर लग गई। और इसका एक समाधान है कि विक्टिम्स जो है उनको भी न्याय मिला, भले लेट मिला लेकिन रिजल्ट मिला है, हम लोगों को भी खुशी है।
ये थे पूर्व पुलिस अधिकारी YC पवार। मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को फांसी की सजा क्यों नहीं मिली, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। सलेम को मौत की सजा भले ही ना मिली हो, लेकिन उनकी मां ने बरसों पहले हमारे रेडियो संपादक राजेश जोशी से कहा था कि उनके लिए अबू सलेम मर चुके हैं। सलेम की मां ने क्या कुछ कहा था ये जानने के लिए मैंने राजेश जी से बात की, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से अपराध की दुनिया तक सलेम के सफर के बारे में पूछा।
अबू सलेम, जिनका नाम आज पूरे टेलीविज़न में है, अखबारों में है, दुनिया के हर खबर में है, उन्होंने शुरुआत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ इलाके से की, वहीं के वो रहने वाले हैं और छोटा मोटा धंधा करते थे। बहुत गरीब परिवार में इनकी पैदाइश हुई थी, कुछ काम वाम बना नहीं और पढ़े लिखे थे नहीं, दिल्ली आ गए, दिल्ली में कार वार का रिपेयरिंग का काम करने लगे, यहाँ भी बात नहीं बनी, तो फिर 80 के दशक में वो बम्बई चले गए और बम्बई में उनका संपर्क हुआ तथाकथित अंडरवर्ल्ड के लोगों से, और उनकी हैसियत बहुत बड़ी नहीं थी उसमें, कोई ऐसा डॉन जैसा उनको रुतबा हासिल नहीं था। वो ड्राइवरी का काम करते थे, डिलीवरी बॉय का काम करते थे, दाऊद इब्राहिम के जो गैंग के लोग थे उनके साथ उनका उठना बैठना हुआ, तो धीरे 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 वो अपराध की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। लेकिन जो उनकी शुरुआत हुई, जो उनका गांव था, उसके बारे में मुझे एक तरह से फर्स्ट हैंड जानकारी है।
जी, आप शायद उस गांव गए भी थे, आपने दौरा किया हुआ है।
आजमगढ़ के पास ही सराय मीर एक छोटी सी जगह है, सराय मीर कस्बा है जहां इनकी पैदाइश हुई अबू सलेम की। और मुझे याद है जब फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता निर्देशक गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, मुझे लगता है कि 1996 में या 97 में हुई थी, तो मैं उसके तार एक तरह से ढूंढने के लिए गया था आजमगढ़। बम्बई में जो अंडरवर्ल्ड है वो कैसे आजमगढ़ से शार्प शूटरों को रिक्रूट करता है और वहाँ से लेके बम्बई जाता है, उनको 10,000 रुपया, तब तो बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था, 10-20-50,000 रुपया दे करके, एक बंदूक दे करके अपने दुश्मनों को कैसे ठंडा करवा देते हैं, ये खबर करने में गया था। और तब मुझे किसी ने बताया कि अबू सलेम की माँ सराय मीर में रहती हैं।
तो आपकी उनकी माँ से बात हुई?
जी हाँ, मैं बात या मुलाकात क्या हुई कि ये तो मुझे इतना इस वक्त भी बुरा लग रहा है कि मैं उनके टूटी फूटी एक कमरे की खोली में गया उनसे मिलने के लिए। गर्मी का मौसम था और पंखा चल रहा था, वो नीले आसमानी रंग की साड़ी में, सूती जो साड़ी होती है उसमें बैठी हुई थी, बुज़ुर्ग महिला, और मैंने उनसे एक सवाल कर दिया कि अबू सालेम अब कहाँ हैं, आपका कोई संपर्क होता है नहीं होता है? आप यकीन कीजिए वो बुजुर्ग महिला मेरे सामने, उसकी आंखों में आंसू आ गए और जारो कतार वो रोने लगी। और फिर उन्होंने अवधि में मुझसे कहा कि हमारे लिए, कुछ उनका दूसरा नाम लिया था मुझे याद नहीं, अबू सालेम शायद नहीं कहते थे उनको, हमारे लिए अब वो मर गया है, वो जिंदा नहीं है।
यानी जो सजा दी गई है उनको कोर्ट की तरफ से उससे कहीं ज्यादा बड़ी सजा,
कहीं ज्यादा उनकी माँ की तरफ से आई थी कि जवान बेटा, माँ घर में बैठी हुई है लेकिन जवान बेटा उसके आसपास कहीं नहीं था। फिर उन्होंने रोते रोते अपनी दास्तान बताई कि किस तरह से उनके पति की डेथ हो गई थी, और उस वक्त जब मैं उनसे मिला था तो बीड़ियां रोल करके, बीड़ियां बना के अपना किसी तरह गुजारा चला रही थी, और उस वक्त गिरफ्तार नहीं हुए थे अबू सालेम, विदेशों में कहीं पर थे अंडरग्राउंड, वो अय्याशी में घूम रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन माँ बीड़ियां बना बना कर अकेली किसी तरह अपना गुजारा चला रही थी।
ये थे बीबीसी हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अगली खबर बेंगलुरु से। पत्रकार गौरी लंकेश के अंतिम संस्कार के एक दिन बाद यानी आज, उनके भाई इंद्रजीत और बहन कविता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उनकी हत्या की हर कोण से जांच कराने की मांग की गई। गौरी लंकेश की दो दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इंद्रजीत और कविता ने यह भी साफ किया कि जांच को लेकर परिवार में कोई मतभेद नहीं है। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
गौरी लंकेश के छोटे भाई इंद्रजीत लंकेश के एक बयान ने हर किसी को चौंका दिया था। उन्होंने बुधवार को एक बयान दिया था कि माओइस्ट भी उनके बहन की हत्या के जिम्मेदार हो सकते हैं। इसे लेकर परिवार में मतभेद होने की अटकल तब शुरू हो गई जब एक मीडिया रिपोर्ट ने यह भी कह दिया कि बहन कविता लंकेश उनके भाई की राय से सहमत नहीं है। आज इंद्रजीत और कविता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर अपनी राय पेश की। बीबीसी से बात करते हुए इंद्रजीत ने कहा, हमने अपनी राय नहीं बदली है, हमने इतना ही कहा था कि माओइस्ट भी हमारी बहन गौरी की हत्या कर सकते हैं। हम यही कह रहे हैं कि हर कोने से गौरी की हत्या की जांच होनी चाहिए। हत्या माओइस्ट ने की हो या चरम दक्षिणपंथी ने, हमें न्याय चाहिए हमारे बहन के हत्या के लिए। ये थे इंद्रजीत लंकेश के शब्द। इंद्रजीत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो माओइस्ट पर उंगली इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के समर्थक भी इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, बल्कि वो सच जानना चाहते हैं। उनके बोलने का मकसद इतना ही है कि जो भी जिम्मेदार हो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। बहरहाल कविता लंकेश ने कहा,
देयर आर 500 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, फॉर मी देयर इज नो पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट हर आइडियोलॉजीज।
हमने किसी को हमारी राय नहीं बताई थी। हमारे भाई भी यही कह रहे हैं कि बहुत सारी संभावनाएं मौजूद हैं। मुझे इतना ही पता है कि गौरी की हत्या वही किए हैं जो उनकी विचारधारा के खिलाफ हो। गौरी के साथ किसी भी तरह की व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता नहीं हो सकती थी। ये थे कविता लंकेश के शब्द। लेकिन दोनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके परिवार का निर्णय ये है कि SIT की जो जांच राज्य सरकार ने शुरू की है वो चलनी चाहिए। अगर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो CBI को जांच करना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो CBI को जांच करने का अधिकार देने के लिए तैयार हैं, अगर लंकेश परिवार चाहती है तो। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
क्या भारत के उत्तर और पश्चिम में मौजूद ताकतों ने परिस्थितियों को इस कदर बिगाड़ दिया है कि भारत को दो फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ सकती है? जैसा कि सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा है। सेना प्रमुख ने दिल्ली में एक भाषण में कहा कि एक साथ दो फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने इसे लेकर रक्षा मामलों के कुछ जानकारों से बात की। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
क्या ऐसा हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान एक तरफ हो जाएं और भारत को दोनों से साथ साथ युद्ध लड़ना हो? पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कहते हैं, भारत में आतंकवाद के लगातार एक्सपोर्ट और कश्मीरी अलगाववाद को बढ़ावा देने की वजह से पाकिस्तान के साथ हालात बहुत बिगड़ चुके हैं।
पाकिस्तान के संग में लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन करना जरूरी है कि पाकिस्तान के संग हमारी अच्छी खासी दुश्मनी चल रही है और मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, रोज सुबह शाम 24 घंटे गोला बारूद इधर से उधर होता है।
चीन पर जनरल रावत का कहना है कि डोकलाम में 2 माह तक जिस तरह का तनाव जारी रहा वो कभी भी युद्ध में तब्दील हो सकता है, और चूंकि चीन ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा निवेश कर रखा है तो किसी भी जंग की स्थिति में दोनों साथ आ सकते हैं।
दो दुश्मन हमारे और दो दुश्मनों के बीच में दोस्ती, तो इसका नेट नतीजा क्या निकलेगा कि दोनों मिलके हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं अगर समय आया तो। अगर हमने पाकिस्तान के बरखिलाफ कुछ किया, पाकिस्तान से कुछ मुठभेड़ हुई, चाहे वो शुरू करें चाहे हम शुरू करें, तो चाइना उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। या अगर हमारी और चाइना की कुछ कहीं मुठभेड़ हुई, चाहे ढोकलम में हो, चाहे अरुणाचल में हो, चाहे ईस्टर्न लद्दाख में हो, तो हो सकता है पाकिस्तान इधर से कुछ हमें प्रेशर डाल दे।
रक्षा मामलों के विशेषज्ञ अजय शुक्ला जनरल रावत के बयान को फौज की प्लानिंग के हिस्से के तौर पर देखते हैं।
ये भारतीय सेना के प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जब भी जंग हुई है पाकिस्तान के साथ 1965 में, 1971 में भी, पाकिस्तान ये उम्मीद लेके चला था कि चीन उसकी तरफ जंग में उतर आएगा।
अगर हालात दो फ्रंट पर लड़ने के आते हैं तो कितना तैयार है भारत, जनरल प्रसाद कहते हैं।
देखिए, तैयारी होती है सेक्टोरली हम तैयार हैं, लेकिन अगर आप हम यह समझना चाहें कि एक प्रोलॉन्ग्ड युद्ध होने वाला है, तो इसमें भारत ने काफी सालों से 20 साल से मॉडर्नाइजेशन को निग्लेक्ट किया हुआ है। मैं समझता हूं कि ढोकलम के बाद एक इंडिया के लिए अच्छी खासी वेकअप कॉल आ गई है। हम एक तो फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर बड़ी मुश्किल से मिले हैं, अब देखिए आगे मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है।
वहीं अजय शुक्ला का कहना है कि लड़ाई लंबी चली तो मुश्किल हो सकती है।
इनिशियल स्टेजेस में या पहले दिनों के अंदर भारतीय सेना लड़ने के लिए तैयार है, उनकी नफरी काफी है बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड, एमिनेशन इनिशियल कॉन्टैक्ट रेट्स के ऊपर या शुरू में जो है जो जितना खर्च होगा एमिनेशन, गोलियां, बारूद, आर्टिलरी के गोले वगैरह, वो भारतीय सेना संभाल पाएगी। लेकिन अगर जंग ज्यादा दिन चली, 10 या 14 दिनों से ज्यादा अगर जंग चली, तो फिर भारतीय सेना को कमियां महसूस होने लग जाएंगी।
मगर जानकारों का मानना है कि 3 परमाणु ताकतों के बीच जंग को दुनिया इतना लंबा खींचने देगी ये नामुमकिन है। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
उधर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग शुआंग ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत को इस पर बात करनी चाहिए कि दोनों देशों के बीच संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं। चीन और भारत दोनों एक दूसरे के लिए अहम पड़ोसी देश हैं, इसके साथ ही दोनों विकासशील देश हैं, दोनों उभरते हुए बाजार हैं, दोनों देशों को क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। शुआंग ने यह भी कहा कि मैं नहीं कह सकता कि भारत का ये आधिकारिक बयान है या नहीं, क्या सेना प्रमुख का निजी तौर पर ऐसा मानना है या भारत आधिकारिक तौर पर ऐसी जानकारी दे रहा है। हाल में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, उसके बाद दोनों देश दावा कर रहे हैं कि संबंध सामान्य हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं क्या है इस हफ्ते आपकी राय।
आपकी राय, नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं
वंदना।
जी हाँ, वंदना पिछले हफ्ते भी हमारे साथ थी और अभी मेरे साथ हैं आप, और इस स्टूडियो में हैं, आपके पास चिट्ठियां भी बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं को ये लगता होगा कि आप रहती कहाँ हैं आज का, जरा बताइए पहले।
तो थोड़ा सा बता दूं, बीबीसी हिंदी से तो नाता है ही, ये 13वां साल है। थोड़ी सी जिम्मेदारी बदल गई है, टीवी का जो कार्यक्रम है बीबीसी के आने वाले कार्यक्रम हैं, तो अभी नई जिम्मेदारी संभाली है टीवी संपादक की।
इसीलिए आपकी आवाज कम सुनने को मिलती है हमारे श्रोताओं को, लेकिन हम बीच बीच में चिट्ठियों के लिए आपको जरूर बुला लेते हैं।
बिल्कुल,
तो चिट्ठियों की बात हो रही है तो शुरुआत कीजिए।
जी, पहला जो ईमेल है ये है बिष्णु कुमार का, इन्होंने ग्रेटर नोएडा से लिखा है, तारीफ भी है और आलोचना भी। तारीफ ये कि शकील अहमद द्वारा जूनागढ़ रियासत पर प्रस्तुत रिपोर्ट अच्छी लगी, और साथ ही इन्होंने एक अभिमन्यु कुमार साहा की रिपोर्ट थी निसार अहमद पर, वो भी इन्हें पसंद आई।
निसार अहमद जो बहुत ही गरीबी में पले बढ़े हैं दिल्ली में, लेकिन वो तो बहुत तेज फर्राटा दौड़ते हैं।
जी जी जी, बिल्कुल,
उन पर ये रिपोर्ट।
और आलोचना ये की है इन्होंने कि इनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीबीसी भी अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद के चक्कर में पड़ गई है।
इन्होंने कोई अगर उदाहरण दिया हो तो हम इस पर बात आगे कर सकते हैं, बिना उदाहरण के तो बात लगता है कि हवा में रह जाएगी।
जी, उदाहरण तो नहीं दिया है, पर इनका कहने का तात्पर्य यही है कि आप भी ऐसा लगता है कि पूरे विश्व को मुसलमान और गैर मुसलमान समुदाय में विभाजित कर रहे हैं।
समझ में मेरे नहीं आया कि हमारी रिपोर्टों में, खबरों में मुसलमान और गैर मुसलमान का सवाल कहाँ से आ गया? आप जानते ही हैं, पत्रकारिता में जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो खबरें होती हैं, उनको हम प्रसारित करते हैं, उनको हम छापते हैं। अगर वो ईसाइयों के बारे में हों, बौद्ध धर्म वालों के बारे में हों, हिंदुओं के बारे में, मुसलमानों के बारे में, वो सब हम उसी तरह से छापते हैं, उसी तरह से उसको एक तरह से परावर्तित कर देते हैं।
जी बिल्कुल। और मैं दूसरी जो चिट्ठी है ये है मोहम्मद नजमुल हसन की, पश्चिमी चंपारण बेतिया बिहार से। लिख रहे हैं कि बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, पर इन्हें खासकर वसतुल्लाह खान की डायरी बहुत ही अच्छी लगती है।
जी, वसतुल्लाह खान के तो बहुत सारे मुरीद हैं और वसत साहब भी इस कार्यक्रम को सुनते होंगे तो सिर्फ मुस्कुरा के रह जाते होंगे। हाँ, उनसे, लेकिन मेरी अगर उनसे फोन पर बात हुई तो ये तमाम चिट्ठियाँ और इनकी जो तारीफें हैं वो उन तक पहुंचा दी जाएगी।
जी बिल्कुल। अगला ईमेल है मध्य प्रदेश मंदसौर से, महेंद्र कुमार जोशी। कहते हैं कि 7 साल का था 1971 में जब सुनना शुरू किया था, और हमारा जो गांव है सरदार नगर, जिला भीलवाड़ा, वहां रेडियो लाइसेंस सिर्फ हमारे ही पास था।
ओ, तब लाइसेंस से रेडियो सुना जाता था।
जी जी, कहते हैं कि अब तो केवल 2 ही सभा रह गई हैं और उसमें भी आप कई बार रिपीट कर देते हैं।
रिपीट तो जी हाँ, बहुत, ये आपने सही बात कही। हम पुनर्प्रसारण उन्हीं कार्यक्रमों का करते हैं जिन कार्यक्रमों में मेहनत बहुत लगती है, और सिर्फ एक कार्यक्रम में उसको चला करके खत्म कर देना भी ठीक नहीं है। बहुत सारे श्रोता सिर्फ एक कार्यक्रम सुनते हैं, दूसरा कार्यक्रम नहीं सुनते हैं, तो इसलिए उन श्रोताओं को लगता होगा कि ये पुनर्प्रसारण हो रहा है जो दोनों कार्यक्रम सुनते हैं।
जी हाँ बिल्कुल, नए रिपोर्ट हमेशा रहती है कार्यक्रम में। और अगला अगर मैं ईमेल लेना चाहूँ तो ये है अभिषेक आर्य, और ये कह रहे हैं कि बीबीसी इंडिया बोल में आपने नोटबंदी विषय लिया था जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति थी, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मेरा जो पृष्ठभूमि है वो वित्त विषय में रही है, इसलिए ये बेहतर तरीके से समझ पाए, और इन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम इन्होंने काफी पसंद आया।
और इन्होंने आगे कुछ आलोचना की, कुछ 2-4 लाइनें भी लिखी।
जी जी, इन्होंने अपनी एक तरह से राय रखी है कि अनियंत्रित मुद्रा स्फीति की अवस्था में विमुद्रीकरण होना उपचार हो सकता है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही हो तो इस तरह के जो कदम हैं वो आर्थिक रूप से तोड़ने वाले हो सकते हैं।
इनकी अपनी जाती राय है, इनकी बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि जो नोटबंदी हुई उसके फायदे भी हुए हैं, लेकिन अपनी अपनी राय है तो हमारे लिए तो सब बराबर है।
बिल्कुल, सभी तरह की राय जो है, मत भिन्नता जो है वो
जरूरी भी है।
अगले दो मैं एक साथ अगर लेना चाहूँ, ये है जूंजाराम सारला बाड़मेर से।
जी,
इन्होंने कहा है कि एक तरह से आलोचना ही है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि बीबीसी पर पहले जैसा विश्वास नहीं रहा, अधिकतर रिपोर्ट एक तरफा होती हैं।
इन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों लग रहा है।
जी अब, कोई
जूझाराम जी, ऐसा क्यों लग रहा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, हमारे कार्यक्रम सुनने के बाद अगर आपको कोई खास रिपोर्ट या इंटरव्यू या एक जो भी हम लोग प्रसारित करते हैं उसको सुन करके अगर ऐसा लगे कि इसमें हमारी विश्वसनीयता पर कुछ दिक्कत आ रही है, तब हमको खास तौर पर उसके बारे में लिखेंगे तो हम साफ साफ जवाब दे पाएंगे।
जी बिल्कुल, जो दोष होता है जिन्होंने आलोचना की, दोनों से ही अगर है कि अगर रिपोर्ट बता पाए
जी
क्यों उन्हें ऐसा लगा।
तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि समय हमारा ख़त्म हो चुका है। बीबीसी हिंदी सेवा का मैं पता बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और श्रोताओं, आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद से विवादों में आए सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के अध्यक्ष विपश्यना इंसा ने आज एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अभी तक डेरे के उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अभी भी डेरे के अंदर 7,000 बच्चे रहते हैं, इनमें कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। उनका ये भी कहना था कि डेरे के अंदर कोई यौन शोषण नहीं हुआ। अगर आप उनकी पूरी बातों को जानना चाहते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। अभी वक्त आपसे विदा लेने का है, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुलदीप मिश्र से मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामलों की सुनवाई कर रही टाडा अदालत ने अबू सलेम और करीमुल्लाह शेख को उम्र कैद और ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान को मौत की सज़ा सुनाई है, जबकि रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तूफान इरमा से करेबियाई क्षेत्र के द्वीपों पर भारी तबाही हुई है जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी स्पेन के कैटलोनिया इलाके में स्वतंत्र जनमत संग्रह कराने की योजना को गैर कानूनी बताया है और चेतावनी दी है कि वे 40 वर्षों के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। यूरोपीय संघ ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट समूह यूरोप में अपने हमलों की फंडिंग बढ़ा सकता है। बीबीसी समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया भूमिका ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।